हजारों ऋषि लोग आएंगे ब्रह्मज्ञानी, जो भूत भविष्य को बदल सकते हैं, ऐसे ऐसे ऋषि। कर्म की रेखा को मिटी नहीं जाती, उस रेखा को भी मिटाने वाले ऐसे ऐसे ऋषि उसमें आए। उन्होंने प्रश्न किया, सुखदेव गोस्वामी भी आ गए, नंग धड़ंग कोई प्रयोजन नहीं, भिक्षा की भी जरूरत नहीं, जो कपड़े ही नहीं पहनते हैं, भूख ही नहीं लगती, उनको क्या जरूरत है, वो भी उस सभा में आ गए। तो उन्होंने पूछा, जो परम धर्म है हमारे लिए वो बताया जी, हमारे लिए क्या करनी है। मैं दो एक दिन में मर जाऊंगा, 7 दिन की मृत्यु है, और जो लोग को कोई ठीक नहीं है गारंटी, ये कल मिलेंगे कि अभी मरेंगे कि परसों कि बरसों, कोई ठीक नहीं, उन लोगों के लिए क्या करना उचित, आप निष्कपट रूप में हमको बतलाइए, कोई छल छंद नहीं, आपको मुझसे लेना देना कुछ नहीं है। नहीं, आदमी जब स्वार्थ में बधा होता है तो दूसरों को ठगने के लिए उसके मन के मुताबिक बात कहता है। आपने तो हमारा अन्न खाया नहीं, जल खाया नहीं, आपको मुझसे लेना भी नहीं है, आप हमको प्रसन्न भी नहीं करना है, आप सीधी सीधी चुगती चुगती जैसे भी बात हो सच सच बतलाएंगे हमारे लिए क्या कर सकते हैं। और जो 7 दिन की मृत्यु भी नहीं है, आज ही मृत्यु है, अभी पल में प्रलय होएगी, आप बहुरी करोगे, अभी पल में मृत्यु हो जाएगी, अभी जानते नहीं है। दिल्ली वहां से मथुरा से आ रहा था, कार में हम लोग आ रहे थे, देखा जी 2 कार चकनाचूर पड़ी हुई है, और उसके ऊपर में नीम का एक बहुत बड़ा भारी मोटा गिर गया। आंधी आई थी और बरसात जोरों से हो रही थी, और गाड़ी स्पीड में है, अब स्पीड में है गाड़ी, अब पेड़ गिरने वाला है, अब बतलाइए जैसे कितना सेकंड लगा होगा जो उसके नीचे आ करके आगे नहीं जा सका, कितने अंततः तो 60-70 की स्पीड से तो गाड़ी चली रही होगी। अब पेड़ के गिरने में भी तो कुछ सेकंड लगेंगे, किंतु ऐसे मोमेंट में गिरता है वो पेड़ जो आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ सका, और वहाँ पर वो दोनों खत्म, गाड़ियाँ दोनों टूट गई। अब उसमें कितने आदमी मरे कि नहीं मरे, क्या हुआ नहीं, ये पता नहीं, किंतु दोनों गाड़ियाँ चकनाचूर हुई पड़ी। कितना सेकंड लगा, कभी 1 मिनट पहले वो सोचा होगा जो अभी तुरंत पेड़ आगे से गिर रहा होगा, हैं, वो एक बाइक नहीं गिरता डालियों के साथ, तो ऐसे ऐसे तब गिरा होगा, किंतु गाड़ी का फोर्स ऐसा, ठीक उस फोर्स से आई और पेड़ गिरा, उसी के नीचे वो दब गए, 1 सेकंड सोचने का समय नहीं मिला होगा। हम लोग होते तो हो सकता था निकलता राम राम कृष्ण कृष्ण, ये आ जाता, साधारण लोगों के ये सब चीज नहीं आएगी। मृत्यु का कोई ठीक नहीं है जो कब आ जाएगी, परीक्षित महाराज का तो गारंटी है उसके पहले मृत्यु नहीं आएगी, है ना, हम लोग की गारंटी कुछ नहीं है क्या कब हो जाएगा, पल में प्रलय होएगी। इसलिए उन लोगों के लिए क्या कर्तव्य है, ये 1 सेकंड में मृत्यु आनी है, 1 सेकंड में उसका कल्याण कैसे होगा ये भी बतलाइए। ऐसा हो सकता है कि नहीं 1 मिनट में 1 सेकंड में भी कल्याण हो जाए, कैसे होगा। यदि मरते 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 राम या कृष्ण का नाम आ गया, भगवान का नाम, बस और कोई दूसरा उपाय है, कोई उपाय। इसलिए परीक्षित महाराज जी जब प्रश्न पूछा तो उन्होंने कहा जी अच्छा तो ठीक है, सुनो हमारे बात तो विश्वास है या तो पक्का विश्वास, पहले पक्का विश्वास के साथ में ये सब चीजें सुननी चाहिए, आप विश्वास नहीं है तो वो सुन करके वो काम से इधर उधर चले, पक्का विश्वास के साथ वो सुन रहे थे। किस लिए, परीक्षित महाराज जी के सुनने और हमारे सुनने में अंतर है कि एक ही है कुछ अंतर, वो दृढ़ प्रतिज्ञा करके उसको परिणय करने के लिए सत्य संकल्प करके बैठे हुए हैं, जो ये महात्मा कह देंगे, और हम लोगों में क्या है, यदि हमारे अनुकूल होगा तो मानूंगा, नहीं तो आपकी बात नहीं मानूंगा। हम भी कहते हैं यदि हमारी बात अच्छी लगे तो करो और ना अच्छी लगे तो मत करो, वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हैं। आइए आप लोग बैठिए। हाँ, उन्होंने कहा सबई पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति रधोक्षजे। उनको भी बैठाइए। परो धर्मो जतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुक्य अव्यवहिता जा भक्ति पुरुषोत्तमे। उस समय संस्कृत मातृभाषा थी, जिस समय इसकी बात सभी लोग संस्कृत समझते। सुखदेव गोस्वामी ने संस्कृत भाषा में ये बतलाया। संस्कृत भाषा माने सुधरी हुई भाषा जो प्रभु तक भी पहुंच सकती है। ये भाषाएं वहां तक नहीं पहुंचती। ये इसके संस्कृत भाव हों तो पहुंचेंगे। संस्कृत माने सुधरी हुई भाषा। तो सवई पुंसांग, वई माने शब्द का अर्थ होता है निश्चित रूप से। पृथ्वी डोल जाए वो नहीं डोलेगा, वो निश्चित रूप में होगा ऐसा। तो सवई पुंसांग परो धर्मो, यदि कोई इस विश्व ब्रह्मांड का जो संचालन करने वाला समस्त ईश्वरों का जो ईश्वर है, जो सबका आदि है किंतु स्वयं अनादि है, दूसरे का तो आदि है, वो सब उसी से निकलते हैं और स्वयं कैसा है उसका कोई आदि नहीं, वो जो परमेश्वर है उनको पुरुषोत्तम कहते हैं भगवान। उनके चरणों में अहेतु की भक्ति यदि हो, अहेतु की सेवा की वासना हो, तो उसको कहते हैं भक्ति। तैल धारावत अविच्छिन्न गति से उनके चरणों में मन की गति लगे और बिना किसी कारण से, तो उसको कहते हैं भक्ति। अहेतु की माने क्या? हम लोग जो कुछ कर रहे हैं अभी कारण से, कारण क्या? अधिकांश लोग ये समझते हैं संसार का ये जो दुख है कैसे जाए, हमें जो कुछ अभाव है ये कैसा हो। तुम इधर मन दे करके बेटा सुनो तो, हाँ नीचे बैठ करके और एकदम मन से थोड़ा सा और हट जाओ, और टूटने वाली बीच में न हो, मधु को ऊपर से गिराओ तो कैसा तार नीचे से ऊपर तक बच जाएगा। ठीक वैसे निरंतर्यमयी उसका तार न टूटने वाला हो, अहेतु की उनके प्रति भक्ति भागवत में बतलाया। मन की गतियां जब ब्रह्म भगवान के तरफ में जब चलती है और कभी टूटती नहीं है, उसका कोई हेतु नहीं है, स्वाभाविक रूप में हो, तो ये तो भक्ति भागवत में कहा गया। महाप्रभु जी के अत्यंत प्रिय व्यक्ति रूप गोस्वामी ने लिखा, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। भक्ति बहुत प्रकार की होती है। जहाँ पर लिखा गया बेस्ट तो वहाँ पर और इसका कुछ दो और पर्यायवाची शब्द हैं, क्या होगा? गुड, बेटर, बेस्ट, ये तीन है ना, नहीं तो बेस्ट नहीं होगा। इसलिए कोई गुड चीज़ है बेटर है, गुड से बेटर हो गया और एक हो गया बेस्ट। तो यहाँ पर उत्तम यदि लिखा उत्तमा भक्ति, तो एक मध्यमा भक्ति है और एक कनिष्ठा भक्ति, ये समझ। एक वो भक्ति है सगुणा उपासक सागुणा अथवा कामनामयी, सकाम भक्ति है, अपनी कामना के लिए प्रभु को स्मरण करते हैं, तो ये भक्ति विकृत हो गई। कुछ कुछ अपनी और कुछ कुछ उनकी, कुछ कुछ मैं करता हूँ उनके लिए भी कुछ अपने लिए, तो ये हो जाएगी मध्यमिकी। और सब कुछ करते हैं उनके लिए, ये साधारण लोगों के दिमाग में नहीं आएगा। जब साधु संघ बहुत कुछ करेगा, जब चित्त निर्मल होगा, तब इसको समझ सकते हैं। अब इसी चीज को समझाने के लिए एक थोड़ा सा उपाख्यान के माध्यम से सुनाऊं। महाराज दशरथ की इच्छा से आज्ञा से राम लक्ष्मण और सीता जी अयोध्या को छोड़कर के वनवासियों का वेश बनाकर अयोध्यापुरी के शोक के समुद्र में डुबाते हुए चल पड़े। सारी अयोध्या के स्त्री पुरुष बाल वृद्ध वनिता उनके पीछे पीछे लग गए। जब राम ही नहीं तो फिर अयोध्या क्या, जहां राम रहेंगे वहीं हम रहेंगे। यहां तक कि कैकई ने तो कहा था, जब सब प्रजाओं ने कहा अब हम यहां पर नहीं रहेंगे, हम वहीं पर चलेंगे, महाराज दशरथ ने कहा जी ये सारा खजाना सारी प्रजाएं और सारा धन संपत्ति ये सब सेनाएं सब राम के पीछे पीछे चले, हुक्म दे दिया। कई कई उठ करके खड़ी हो गई, ये भर हमको नहीं लेना है, हमने तो भरत के लिए राजा काने बनाने के लिए कहा है, तो प्रजाई नहीं रहेगी, कोष नहीं रहेगा, खजाना नहीं रहेगा, सेनाएं रहेंगे, मंत्रिपरिषद नहीं रहेगा, राजभवन नहीं रहेगा, राजभवन रहेगा, नगर रहेगा सुना, उसको लेकर के उल्लू सब रहते हैं इसमें, उसमें हम लोग नहीं रहते, ऐसा वर नहीं चाहते। सारी प्रजाएं यहाँ रहेंगी, राजकोष भी रहेगा, वैभव वही यहीं रहेगा, राम लक्ष्मण सीता ये तीनों जा सकते हैं। बड़ी पूरी के सब लोग बड़े दुखी हो गए, रामचंद्र जी सबको छोड़ करके रुलाते हुए चल पड़े, सारी प्रजाएं उनके पीछे पीछे हो गए। दशरथ ने कहा या रथ पर बैठ करके जाएगा, जाओ सुमंत्र ले जाओ और रथ से इनको थोड़ा सा दिखला करके बन अब फिर ले आना। रामचंद्र जी बड़ी मुश्किल से रथ पर चढ़े, चढ़ नहीं रहे थे, जब वनवासी ही ले लिया तो फिर यहीं से चलना है तो यहीं से चलेंगे, किंतु लोगों ने माना नहीं, जबरदस्ती चढ़ा दिया। जब वो वन में चले गए, पहली रात को जहाँ रहे वो जहाँ पर कि निषाद राज था, वो प्रयाग से इधर में अयोध्या से थोड़ा सा दूर, वहाँ आकर के रात में सब लोग सोए, सबको छोड़ करके केवट के नौका पर चढ़ करके उस पार चले गए, केवल निषाद राज को साथ लिया और किसी को नहीं, तीन वो और निषाद राज चले, गंगा को पार कर लिया, प्रयाग में पहुंचे, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच करके बोले जी मैं कहाँ रहूं, कहिए आप जगत को आप रखते हैं और हमसे पूछते हैं, मैं कहा चाचा चित्रकूट में रहिए। चित्रकूट में उनको कहा, चित्रकूट में वो पैदल चले, वहाँ पर जब पहुँच गए लक्ष्मण जी ने वहाँ पर कुटी बना दी, बड़ी सुंदर कोट ये बनाया घास फूस का, उसमें ये लोग गृह प्रवेश किया, ऋषियों ने हवन किया, वस्तु की पूजा की और उनको रखा। जब कुछ दिन बीत गए, इधर में भरत जी और शत्रुघ्न ननिहाल में गए थे मामा के यहाँ, वहाँ से आए उनको बुलाया गया और अयोध्या की दशा देख करके बड़े शोकमग्न हो। जब कैकेयी से पूछा जी ये क्या पिताजी नहीं है घर में, तो नहीं वो तो लोग परलोक को सिधार गए। अरे मेरे भैया नहीं देख रहा हूँ राम को, वो कहाँ गए, तो यही तो बात है तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ किया। क्या किया, मैं दशरथ से भी ये वर मांगा था और वर मांगने के साथ में राजा तो राम राम कह करके चले गए, और भैया को मैंने मांगा था जैसे आप वो वन में जाएंगे तो अपनी पत्नी को सीता को और लक्ष्मण लेकर के चले गए, वो हमारे लिए तुमने ऐसा किया, आज से तुम्हारी मेरी मैया तू नहीं है, आज से ये संबंध कट गया। यदि राम अप्रसन्न नहीं होते आज तुमको मैं खंड खंड काट देता, मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता, मैया आपका नाता नहीं रहा, तू हमारी मैया नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं। इसके बाद तो चले गए। अब सबको लेकर के उन्होंने कहा जी अब मैं अयोध्या नहीं रहूंगा, यहाँ का पानी भी नहीं पीऊंगा, मैं तो राम को मनाने के लिए चलूंगा, जो उनको मना करके ले आऊंगा। वशिष्ठ जी से आज्ञा मांगी, उन्होंने आज्ञा दिया, सब पुरी के सब लोग निकले, मैया भी दोनों निकली, कौशल्या जी और सुमित्रा जी। कैकेयी जी अब तक किसी से बोल नहीं रही थी, बड़ा उनको दुख हुआ, ये बेटा भी हमारा आज हमको छोड़ दिया, जिसके लिए मैंने किया वो भी छोड़ दिया। ये मैया कहने के लिए राजी नहीं, हमसे बातचीत भी नहीं कि हमारा शत्रु बन गया ये, किसके लिए मैंने किया। कैकेयी जी जा करके कौशल्या के चरण पकड़ लिए, आ रहा समझ में ना, चरण पकड़ लिया और रोने लगे। कहे क्यों रोती है बहन, अब तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, चलूंगा, भरत हमको नहीं ले जाएगा, किंतु तुम्हारे आदेश को वो उल्लंघन नहीं कर सकता। राम उल्लंघन कर सकते हैं किंतु भरत तुम्हारा आदेश न उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए तुम हमको आदेश दो, हम तुम्हारे साथ में चलो। उन्होंने कहा अच्छा बहन चलो। कितना करुणा का समुद्र उमड़ रहा हो, राम की लीला में यही विशेषता है, करुणा और लोक शिक्षाएं इसमें है, मर्यादाएं मर्यादाओं की शिक्षाएं हैं। कृष्ण की लीला इसे दो अंगुल ऊपर है, इसलिए उसको समझना बड़ा भारी टेढ़ी खीर है, टेढ़ी खीर और समझ में नहीं आएगा, किंतु जब समझ में आ जाएगा ना बस फिर कभी माया में नहीं आएगा। तो उनको लेकर के सभी लोग चल पड़े, ये भी धीरे 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 चित्रकूट में पहुंचे। लक्ष्मण जी ने, लक्ष्मण जी तो तम तमा गए उनको देख करके, सोचा जी आज मैं भरत को मार डालूंगा। ऊपर में चढ़ करके शीशम के पेड़ पर देखा, बड़ी भारी सेनाएं आ रही हैं और उस पर सूर्य वंश का जो ध्वजा है उस पर वो आ रहा है, इसलिए बड़े वो तमतम है। राम ने कहा जल्दीबाजी का निर्णय गड़बड़ का होता है, खूब सोच विचार करके कोई निर्णय लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तुमको पीछे पछताना पड़े। हमको ये विश्वास नहीं हो जाए ये भरत हमसे लड़ने के लिए आ रहा है, कुछ इसमें बात दूसरी है, जरा देखो तो आने तो दो, तुम्हारी वीरता तो कभी काम आ सकती है, आमने सामने पहले से मारने की क्या जरूरत है। बड़ी मुश्किल से उनको समझाया समझे, जब भरत जी आए तो उनके चरणों में गिर गए। गिरने के बाद में पहला संवाद दिया जी पिताजी आपके विरह में राम कहते हुए राम दूसरी बार राम नहीं आया, फिर समाप्त, बस रामचंद्र जी भी उनको मालूम नहीं था कोई संवाद देने वाला, तब तक तो है पहले बार संवाद, बस अब पहला कर्तव्य क्या है, पिताजी का श्राद्ध करना है। इसलिए पिताजी का सब मिल करके लक्ष्मण जी और लोगों ने तो श्राद्ध कर दिया था, श्राद्ध करने के बाद में चले थे, किंतु राम ज्येष्ठ पुत्र हैं इसलिए वो और लक्ष्मण जी रह गए थे। वो वहीं पर गोदावरी के तट पर गए, कोई ब्राह्मण आया और उन्होंने उनको जलांजलि दी, इमली के बीज को पीस कर सत्तु बनाया गया, इमली
काला काला बीज होता है
और उसी के गुदे से पीस करके पानी में लगा कर उसका पिंड बना करके और अपने पिताजी के, वहाँ पर और दूसरा कुछ आटा नहीं, चावल नहीं, कुछ नहीं, तो इसको उन्होंने दिया, वैदिक मंत्रों के साथ में दिया। इसके बाद में बड़े शोकमग्न होकर के यहाँ पर आए। अब इतने में ये लोग तो आए ही, ये खबर मिली महाराज जनक को, जनक भी अपने जमाता और बेटी को देखने के लिए वहां पर उपस्थित थे। सारी प्रजाओं की इच्छा है जयराम लौट जाए, सबसे बड़ी इच्छा है भरत ये जयराम लौट जाए। रात में वो वशिष्ठ जी के यहाँ गए, महाराज वशिष्ठ जी आप हमारे कुल गुरु हैं, राम आपके आदेश को उल्लंघन नहीं कर सकते, आराम से बैठेगा कोई तो नींद आ जाएगी तो आप इनको आदेश दे दीजिए, आपके आदेश का उल्लंघन नहीं करेंगे राम, आप हमारे तरफ से कृपा करके ये राम से कहिए आप अयोध्या को लौट करके राज्य को स्वीकार कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा मैं ऐसे कैसे कह सकता हूँ, तो कैसे कह सकते हैं, मैं ये गलत पथ पर हूँ जो उनको ले जा रहा हूँ। गलत पर नहीं हो तुम,
मैं क्या नहीं कह
सकता, किंतु राम गलत है ये भी मैं नहीं कह सकता। मैं अभी दुविधा में हूँ, अभी तुम ठीक है कि राम ठीक है। हम जब तुम्हारे तरफ में देखते हैं तब ऐसा लगता है तुम पक्के ठीक हो, और जब रामचंद्र जी के तरफ में देखता हूँ देखता हूँ जी वो पक्का ठीक है, उसके बाद में कोई भी गड़बड़ी नहीं, इसलिए मैं कैसे कर सकता हूँ। जब वो नहीं माने बड़े दुखी हो गए, क्यों नहीं बोले वो वशिष्ठ जी भक्ति की रीति को जानते हैं, साधारण आदमी नहीं है, जो रामचंद्र जी के कुल के और रामचंद्र जी के गुरु हो सकते हैं तो वो कैसे होंगे भक्ति तत्व को जानने वाले, किंतु अभी किसी को दिखलाए नहीं जो मैं जानता। तब वो जा करके रात ही रात में वो गए कौशल्या जी के यहाँ, भैया हमारी एक बात तुमको पूरी करनी। तुमने क्या बेटा तुम्हारी बात पूरी करनी होगी, तो ऐसे नहीं तुम हमारी बात को बतलाओ जैसे जरूर पूरी करो। तो बेटा पहले हमको बतलाओ जे क्या बात है, मैं ऐसे कैसे कह दूँ। तो जब देखा भरत जी ने ये ऐसे नहीं कहेगी तो उन्होंने सीधा साधा कहा तुम राम को कह दो ये अयोध्या को लौट करके राज्य को ग्रहण करें। बेटा ये मैं कैसे कह दूँ, तो कैसे नहीं मैं अन्याय कह रहा हूँ। नहीं तुम न्याय कह रहे हो तो फिर तो क्यों नहीं कहती, कहिए राम तो भी अन्याय नहीं कह रहा है मैं क्या करूं, राम भी अन्याय नहीं कर रहा, वो पिताजी के आदेश को मानने के लिए वन में जा रहा है, तो मैं कैसे कह दूं। वो राम कहता है कि यदि केवल मैया या मेरे बाप कहते तो मैं वोट ले लेता जब मैं क्या करूं, किंतु मेरी मैया ने पहले कहा, कौन मैया कह कही, और पिताजी ने भी उसका समर्थन किया तो ये वोट उनका अधिक हो गया, इसलिए मैं वन में जाऊंगा उनके आदेश को पालन करने के लिए, इसलिए उनको मैं कैसे मना करूं ये मत जाए। बात यह है ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा को कभी नहीं तोड़ता, आज तुमको भी देखता हूँ ऐसे ही, इसलिए मैं अन्याय कैसे करूँ मेरी समझ में नहीं आता जब मैं क्या करूँ। इसके बाद में सुनैना जी को बुलाया गया, सुनैना कौन है, सीता जी की मैया, भरत जी ने बुलवाया, वहाँ पर कैकेयी भी बैठी हैं, सब लोग बैठे हैं, बड़े आदर से उनको बुलाया। वशिष्ठ जी ने अनाउंस किया इसका निर्णय महा विदेह राज्य हैं जनक हैं वो निर्णय देंगे जो क्या करना है। भरत को और राम दोनों को बुलाया, कल सभा होगी, ऋषि महर्षि लोग आएंगे, बड़े बड़े ज्ञानी गुणी आएंगे और इसमें विचार होगा, और जो उचित विचार होगा वही भरत जी को और राम को आदेश दिया जाएगा। भरत जी को स्वीकार है, उन्होंने कहा जी हाँ हमको स्वीकार है, और राम से पूछा जी आपको स्वीकार है, तो जरूर स्वीकार है जो ये निर्णय करते जनक, उसको दोनों के नियम मानने के लिए हम लोग बांटते हैं। भरत जी को पक्का विश्वास है उनकी बेटी है ना सीता, तो वो कैसे कहेंगे जिसे वन में जाओ ना? और रामचंद्र जी कहते हैं कि ये बड़े विवेचक हैं, ये अन्याय कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए उन्होंने दोनों राजी हो गए। अब अनाउंस हो कर दिया गया जैसे कल बड़ी भारी सभा बैठेगी और उसमें निर्णय करेंगे वो, और उस निर्णय के लिए दोनों को मानने के लिए बाध्य होंगे दोनों, ठीक। अब जब हो गया तो भरत जी चुपके से उनको बुलाया या उनके पास में चले गए सुनैना जी के यहाँ,
उसके बाद में
निर्णय के बाद में सुनैना जी के पास में पहुंचे। कहीं यदि उन्होंने राम के पक्ष में बात कर दी तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा, इसलिए क्यों नहीं पहले
सिफारिश ले लें।
सबसे सिफारिश किसकी अच्छी हो सकती है, सुनैना जी की पत्नी के बात को सहजी, या और ये तो पतिव्रता हैं, इस और सीता जी की मैया भी हैं, इसलिए उनके पास में सिफारिश पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़े। वो भी माँ ही लगती है जी, मैया आप तुम हमको बचा लो, मैं तो मर रहा, बेटा क्या बात है। तो तुम जनक जी से ये कह दो कि भरत जो कह रहा है न्याय संगत है। अच्छा तुम बतलाओ जो मैं कह रहा हूँ न्याय संगत है कि नहीं, तो न्याय संगत है। तो तुम यही कह दो जो भरत जी न्याय संगत कहता है उसके पक्ष में राय दे दें। अजय ये कैसे हो सकता है, मैं उनके न्याय विचार में मैं आज तक मैंने दखल नहीं दिया। देखिए कैसे कैसे पात्र हैं, उनकी अपनी लड़की है, स्वार्थ में बधा होना चाहिए, स्वार्थ का विचार नहीं किया। राम के लिए जंगल ठीक नहीं ये भी जानती हैं, भरत कह रहा है परम हितकर बात कह रहा है, तभी कुछ दखल नहीं दे। बहुत उन्होंने चेष्टा की, अच्छा मैं जाकर के उनसे कहूंगा, किंतु मैं ये नहीं कर सकती, गारंटी नहीं दे सकती ये क्या बात हुई। मैं उनके कभी भी विचार में हमने दखल नहीं दिया, बस यहाँ तक तो हुई। भरत जी देखिए कहाँ कहाँ सोर्स लगाया, मैया से गोश, गुरु से, फिर अब उनकी सुनैना सास से, सब जगह उन्होंने ये लगाया। अब सभा बैठी, बहुत विशाल सभा बैठी, एक तरफ ऋषि महर्षि जो त्यागी संत लोग हैं वो लोग बैठे, दूसरे तरफ में ये जो वहां से अयोध्या वाले सब जब गए थे, मैया इत्यादि सब तीनों बैठी, वशिष्ठ जी बैठे, एक तरफ में राम बैठे, क्योंकि अब वनवासी अब हो गए हैं ना, किंतु पत्नी को साथ रखा तो तभी ये वनवासी में इनकी गिनती हो रही है, इसलिए उधर में बैठे। अब भरत जी किधर बैठे, मैया जी इधर में है और वहां की जो प्रजाएं हैं उनके तरफ में बैठे। उन्होंने कहा, भरत जी ने प्रसंग पहले तो अपने गुरु को प्रणाम किया, गुरु जी कृपा करके ऐसी बुद्धि देंगे जो हम मैं कहीं गड़बड़ न कर लूं, ये साधारण बात नहीं इसकी, इसका निर्णय देना, ये जजमेंट बहुत ही प्रभावशाली है, बहुत आगे का काम का ये है, इस निर्णय पर सारा विश्व ही एक तरह से निर्भर करता है। अपने गुरु जी को प्रणाम किया और गुरु जी को प्रणाम करके विचार करके बोले, जनक जी विचार करके बोले, भाई मैं सब तरह से विचार करके देखा, जो भरत जो कर रहा है बहुत ही न्याय युक्त है, बहुत ही न्याय युक्त है, किंतु भरत जी के जब तरफ में, जब राम के तरफ में विचार करता हूँ तो राम जी का देखता हूँ, राम का मर्यादा से बंधा हुआ है, ये मर्यादा का पहाड़ है, कई हजार आंधी तूफान वर्षा आए ये डोलेगा नहीं, एकदम जैसा का तैसा ये खड़ा रहेगा स्थिर, इसको डुलाना संभव नहीं है किसी चीज से। और भरत जी का क्या है, उसका है प्रेम, भातृ प्रेम, वो ऐसा है जो ऐसे ऐसे पहाड़ों को वो डुबा देगा, जहां प्रेम है वहां पर रीति नीति बहुत नहीं होती, मर्यादा का बंधन नहीं रहता। इसलिए मैं सब प्रकार से विचार करके देखता हूं कि इस विषय में भरत जी की जीत है और राम का पराजय है, भरत के प्रेम में रामचंद्र जी का मर्यादा डूब जाएगा। सब जगह ताली बजने लगी और बड़े प्रसन्न होंगे, भरत जी एकदम आनंद से एकदम भर गए, मैयाओं भी जितनी भी माया थी, माताएं थी वो भी प्रसन्न हुई, और प्रजाओं का था कहना नहीं, भरत जी तो उत्फुल्ल हो गए, आज मैं बच गया, नहीं तो मैं आज मर जाता, राम का विरह मैं नहीं सह सकता। थोड़ी देर के बाद में बोले, ठीक है भरत जी की जीत है, प्रेम सब समय ऊंचा होता है, मर्यादा उतनी ऊंची नहीं होती जितना प्रेम होता है, कृष्ण के और राम के लीलाओं में यही भेद है, कृष्ण लीला है जो वो प्रेम का माधुर्य है और राम की लीला मर्यादा का पहाड़ है, ये टस से मस नहीं होने, किंतु उसको भी डुबा देगा, किंतु डूबने पर भी वो पर पहाड़ इधर उधर नहीं हटेगा, गिर धारा में बहेगा नहीं, वो ठीक रहा
रहेगा, पर वही रहेगा,
वही रहेगा। अब विचार कर रहे हैं यहाँ पर, अब भक्ति का विचार ले आ रहा है, उन्होंने कहा देखो प्रेम की भी एक अपना नियम है, बिना नियम का प्रेम भी नहीं होता है। प्रेम में एक बात होती है, एक प्रेमिक होता है एक प्रेमी होता है, जिसके प्रति एक प्रेम किया जाता है और जो प्रेम करता है। जिसके प्रति प्रेम किया जाता है उसको कहते हैं विषय, और जो करता है उसको कहते हैं आश्रय। भरत जी प्रेम के आश्रय हैं और राम क्या हैं? प्रेम के विषय हैं। भरत जी को तो जीत मैंने कह दिया है, अब जो प्रेम करता है उसको ये सोचना है, देखना है, ये नियम है प्रेम का, अपना दुख सुख सब कुछ भूल जाए, अपनी कोई आकांक्षा न रहे, अहै तुकी हो वो प्रेम। ये देखता है कि हमारे प्रभु को किस प्रेम से, किस सेवा से, क्या करने से वो सुखी होगा, बस यही विचार करता है। आया समझ में? जो प्रेम करता है वो ये देखे, अपना सुख दुख न देखे। एक साधारण रूप में देखो, एक मैया को बच्चा हो जाता है, मैया अपना सुख नहीं दुख नहीं दे करके दिन रात बच्चे को रात में क्यों क्यों बच्चा करने लगा, उठ करके कोई अपना सुख दुख नहीं देखती और उसका पालन पोषण करती है, रात भर सो नहीं पाती, यदि बच्चे को कुछ हो गया और रोता रह गया रात, ठुकरा देगी बच्चे को या थप्पड़ मारेगी? और ऐसे माँ को जो छोड़ देता है उसका समान और जगत में कोई पापी व्यक्ति नहीं है, ये भी बात ठीक है। किंतु इसमें भी बहुत से विचार हैं, उन विचारों को मैं पीछे बतलाऊंगा। पाप पिता और माता के ऋण से हम कभी भी नहीं दूर हो सकते, किंतु यही देखना है कि पिता यथार्थ में कौन है। अभी हम इस प्रेम के प्रसंग पर आ रहे हैं। भरत जी का कर्तव्य क्या है? वो कह रहे हैं जनक जी तुम्हारा कर्तव्य यह है, तुम ये देखो अपने सुख और अपना दुख मत देखो, तुम क्या चाहते हो ये मत देखो, देखो कि राम किस चीज में प्रसन्न है ये चीज देखो, इसका नाम है भक्ति ना? तुम ये मत देखो जी हमको किस में सुख है, राम के बन जाने में दुख है, राम के लौट आने में हमको सुख है, तुमको सुख हो रहा है, अभी तक तो तुम ये विचार कर रहे, इस विचार को छोड़ो, ये भक्ति नहीं है, ये प्रेम नहीं है, वहां पर प्रेम का गंध भी नहीं। तुम ये विचार करो राम को क्या करने से सुख होता, ये देखो। मैंने कहा जी आज तो मेरी नींद खुली, मैं तो यही देख रहा था ये राम लौट आने से मुझे सुख होगा, यद्यपि भरत का इसमें त्याग है, अपने राज्य मिले हुए को राम को दे रहे हैं, किंतु भीतर से क्या है वो देख रहे हैं कि हमको ये सुख है, इस त्याग में भी हमारा सुख है, जिस त्याग में अपना सुख है वो प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, ये भी देखो। इसमें ये देखना है जिसके प्रति हमारी भक्ति हो रही है कृष्ण के प्रति, राम के प्रति, राम को हमारे इस क्रिया से सुख होता है कि नहीं? तुमको बहुत गर्मी लग रही है और तुम पंखा लेकर के उनको झलने लगे गुरु जी को, और गुरु जी को लगी है प्यास खूब जोरों से, तो हवा से देने से काम चलेगा? ये देखो जी गुरु जी की क्या जरूरत है, तुम्हारी अपनी जरूरत छोड़ो, तुम देखो जी उसमें कम क्या करने से उनको सुखा, अतः तुम राम से पूछो या उनके हृदय में भीतर अंदर में जाकर के झांको, उनको किस में सुख है, तो बन जाने में सुख है कि अयोध्या का राज्य लेने में सुख है, ये देखो, ये इसको कहते हैं। हमारे सुख दुख के ऊपर में कृष्ण भक्ति नहीं है, हमारी उस क्रिया से जिससे कि राम प्रसन्न हो, इसलिए कहा अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमम। अनुकूल माने कृष्ण को जो रुचि कर रख रही है, उनको जो इच्छा है हार्द इच्छा है, उसको कहते हैं भक्ति। इसलिए भक्ति साधारण प्रेम साधारण चीज। रामचंद्र जी के पास में गए, आज मेरी नींद खुल गई, आज तक मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, मैं देखता था मुझको इसमें सुख है इसलिए राम को सुख होगा, किंतु सचमुच में राम के हृदय के अंदर में मैंने नहीं झांका कि उनको किस में सुख है। वहां पर गए, राम को प्रणाम किया, ये प्रभु मेरी समझ में नहीं आ रहा, आज मेरी नींद खुली है,
आपको क्या चाहिए,
आप बतलाइए तो मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा जी क्या करना क्या है, उन्होंने डिक्लेरेशन दे दिया है कि तुम्हारी जीत हो गई, मैं हार गया, तो सचमुच मैं हार गया, मैं ये समझता हूँ, इसलिए मैंने राज्य ग्रहण करने की बात ही तो है, तो मैंने राज्य ग्रहण कर लिया। बड़े प्रसन्न हो गए, कहा जी आप तो चलेंगे।
डिक्लेयर हो गया,
मैंने कहा जी से तुम तो यही चाहते हो ना, जहाँ हम राज्य ग्रहण, हाँ मैं राज्य ग्रहण कर, तुम राज्य का भार जो तुम्हारे ऊपर में था, जो तुमको पिताजी ने दे गए थे और मैया तो चाह रही थी, वो सब ठीक है, मैंने ले लिया। किंतु अब तुम एक बात करो, हमारा प्रतिनिधि होकर के, मैं ही राजा, तुम प्रतिनिधि होकर के इस राज्य को 14 वर्ष तक देखभाल करो, तुम्हारा नहीं है, मेरा है, तुम अच्छी तरह से इसको चलाना जब तक कि मैं नहीं आ जाता, ये इसी में मेरी खुशी है। इस तरह से माता पिता सबकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, जगत में एक आदर्श रह जाएगा, ये माता का मैं पिता का ऋण से ऋणी हो जाऊंगा, इसमें मेरी सहायता करो। बस उनका आदेश लेकर के उनको खड़ाऊंगा, जब मैं प्रतिनिधि नहीं रहूंगा, आपकी खड़ा ही आपकी उसकी आपकी प्रतिनिधि है, बस उनके चरण की पादुका लेकर के सिर पर रख करके उसे चामर डोलवाते हुए ले गए नंदी ग्राम में, और अयोध्या में भी नहीं गए, और वहाँ पर उसकी स्थापना की और उनकी सेवा करने लगे और राज्य का कार्य सब देखे। कहा जे एक दिन की यदि देरी हो गई तो ये भरत का प्राण नहीं रहेगा, उसमें निकलेगी आग और उसे जला करके भस्म कर दे। कहा जे कोई चिंता की बात, मैं पहले ही आ गया, जलने की इधर में हर वहाँ तैयारी हो रही थी, और उधर में सुना जे रामचंद्र आ गए, बस विरह उनका समाप्त होगा, जब मिलेंगे, मिले कहाँ पर, नंदीग्राम से वहाँ पर आए चित्रकूट में, और दोनों वहाँ पर मिले हैं, क्योंकि वहाँ पर नंदीग्राम में ही शायद, वहाँ पर आए दोनों मिले, फिर वहाँ आकर के राज्य ले। यह है प्रेम, अपना सुख दुख नहीं, अहे तुकी, उनकी इच्छा के अनुसार में कृष्ण क्या चाहते हैं उसके लिए हम ये समझना चाहिए, इसलिए तब ये उत्तम भक्ति होगी। अब इधर देखिए, अब कृष्ण लीला में थोड़ा सा आएगी, जसोदा मैया कृष्ण को बांध रही है, आंखों से आंसू अनवरत पड़ रहे हैं, ऐसे ऐसे रो रहे हैं जो कज्जल यहां से गिरा और आंखें के पानी से मिल करके यमुना जी बहने लगी, इधर में गंगा जी बहने लगी, और यहां से आते आते इतनी जोर की लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, त्रिवली यहां पर साफ दिखती है, और उसमें तीन पड़ी हुई है त्रिवली इधर पेट में, यह सौंदर्य का निशाना है, जो अत्यंत आनंदी सुंदर होगा तो गले में तीन रेखाएं होंगी और पेट में भी तीन रेखाएं होती हैं, कुंडल झलमल कर रहा है, जब लंबी सांस लेते हैं छोड़ते हैं ना तो कुंडल भी उनके गालों को चुंबन करने लगता है। अरे वाह वाह, ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं। यहाँ पर कृष्ण रो रहे हैं, आज जो देखे एक लठिया उठा, फिर रोता है बंदर बंदर बंधु ने? इस तरह से चोर इत्यादि कह रही है, फिर चोरी करने जाएगा, याद रहेगी ये बात, और वो रो रहे हैं, उनको ऐसे नहीं होता, बांध दिया कमर में रस्सी लगा कर, रो रहे हैं, ये रोना कैसी भक्ति, कृष्ण को तो इसका मतलब ये हुआ, जब कृष्ण ये रो रहे हैं ना तो कृष्ण को ये अच्छा लग रहा है, अच्छा तो नहीं लगता, तो इसको कैसे कहेंगे भक्ति, इसीलिए कह रहे हैं ये चारुण मुष्टिक है, कृष्ण से लड़ रहा, आज बहुत दिनों के बाद में एक वीर मिला और उसके साथ में वीर रस का आस्वादन करने लगे, और पैतरा और ताल ठोकते हैं और भिड़ जाते हैं, आज बड़ा उत्साह हो रहा है, बहुत आनंद, इधर दांत से इस तरह से है और उधर में मंद मुस्कान उनके होठों पर खेल रही, बहुत आनंद मिल रहा है, किंतु इसको भक्ति कहेंगे कि नहीं, कृष्ण को तो आनंद मिला, नहीं ये भक्ति नहीं है, क्यों, इसमें ये देखो जो आश्रय है, जो चारण मुष्टिक है, उसकी कृष्ण के प्रीति चाहता है ना अप्रीति चाहता है, क्या चाहता है, वो जान से मार डालना चाहता है, इसलिए कृष्ण की वृत्ति आनंद भक्ति नहीं, जो आश्रय है उसकी वृत्ति इसके ऊपर में निर्भर है, इसलिए कृष्ण को मार डालना चाहता है, भले ही कृष्ण को आनंद हो जाता है इसलिए वो भक्ति नहीं, ये विरोधी भाव प्रतिकूल हो गया, इसलिए ये भक्ति नहीं। और जसोदा जी कहे हमारे दूध से तो इसकी रक्षा होगी नहीं, कितना दूध पिएगा, मक्खन चाहिए और सब चीज़ें गायों का बना करके रखा है, इसलिए इसने ये गलत काम किया। अभी यद बिगड़ जाएगा तो पीछे इसको ठीक नहीं किया जा सकता है रास्ते पर। अभी बच्चे में ही इतना, और बड़ा होगा तो नहीं जाने धुरंधर कैसा होगा। अभी से इसको शासन करके ठीक करेंगे, वो उसके भलाई के लिए कर रहे हैं, इसलिए इसको भक्ति कर। ये कहाँ की भक्ति है जो कृष्ण आकर के बैठे हुए हैं गोपियों के पास में, राधा जी के पास में, और वो आने के साथ में ऐसा मुंह कर दिया और वो हजार बार मना रहे हैं जे बोलो हमसे, तो वो बोल नहीं गई। ये कहाँ से भक्ति हुई? ये कृष्ण को राधा जी से बोलना अच्छा लगता है न राधा जी मान करें उनसे बोले नहीं, कौन उनको अच्छा लगता है? बोले ये इसी के लिए तो इतना प्रयत्न, और वो बोल नहीं रहे, बल्कि सख्सियों से कहते हैं इसको बाहर कर दो। ये कौन सी भक्ति हो गई? अच्छा, कृष्ण वहीं पर बैठे रहे और जब तक मनाए नहीं, तो ये राधा जी को वो इच्छानुसार में चल रहे हैं न राधा जी उनके इच्छानुसार में चल रही, ये बहुत गूढ़ रहस्य है। भरत जी का चरित्र समझ में आ जाएगा, ये समझ में नहीं आएगा। ये उससे बहुत ऊंचा है, बहुत। ये प्रेम की रीति, वो समझते हैं जी कैसे ये प्रसन्न होंगे। ब्रह्मा जी स्तव स्तुति कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, और कितने तरह के स्तव स्तुति कर रहे हैं। नौ मिढ़ते अब्र बपुषे तड़ी दम्बराय गुंजावतंस परिपच्छल सन्मुखाय वन्नस्रजे कबल बेत्र विशान बेनु लक्ष्माश्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय। आप पशुओं को पालन करने नंद बाबा के, इसे यशोदा मैया के गर्भ से आप जन्म लिया, सखाओं में घूम रहे हैं, एक हाथ में दधि कवल है और दूसरे में क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं अपने बछड़ों को और बच्चों को। पृथ्वी पर छोटे 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 कृष्ण के बड़े सुंदर पैरों के दाग पड़े हुए हैं, जिसमें कि लक्ष्माश्रिये लक्ष्मी अर्थात सारी संपदाओं के आधार जो चरण कमल है उसमें वज्र ध्वज अंकुश कमल त्रिकोण कलश ये सब उसमें चिन्ह है। उसको चिन्ह को देख करके समझ जाएगी ये भगवान कृष्ण का चरण चिन्ह। ब्रह्मा जी स्तव स्तुति कितनी कर रहे हैं, आपकी महिमा अनंत है। जो लोग कहते हैं कि मैं भगवान की महिमा को जान गया वो मूर्ख है, निरे मूर्ख। मैं आज तक चार मुख वाला होकर के वेदों को प्रकाश करने वाला, उनकी महिमा की लाखों की एक अंश को भी मैं नहीं जान सका। जानंत एव जान। मैं तो ये सोचता हूं कि पुतना उनको जहर देकर के मारने गई कालकूट स्तन में विष मिला कर दी, और उसको प्रेम से धात्री उचित गति दे दी, केवल वेश देकर के ये मैया का वेश बना आई। तो ये यशोदा मैया को, गोपों को, सखाओं को और दो दूसरे हैं उनको क्या देंगे, इनके पास में क्या रखा, वो इसे कोई गति है? मैं तो यही सोच करके चकित हो रहा हूं जो उन लोगों को क्या देंगे, गोपियों के लिए क्या देंगे ये, जो कि उन्होंने सर्वस्व उनके लिए न्यौछावर कर दिया। शत्रु का आचरण करने वाला को तो मातृ गति दे दी, और इनको क्या देंगे, इनके पास में है क्या? कृष्ण ने उत्तर दिया जे न पारे मैं भाई वहां पर ही नहीं रहूंगा, मैं कुछ दे नहीं सकता। अब ये बतलाइए, इस पर ये सबको विचार करना चाहिए। ब्रह्मा जी स्तव स्तुति कर रहे हैं और कृष्ण उनके तरफ में देख रहे हैं, दूसरे तरफ में देख रहे हैं, एक बच्चे के कंधे पर सुबल के हाथ पर यहाँ पर रख दिया अपना, और इधर में देख रहे हैं बच्चे चिढ़ा रहे हैं ब्रह्मा जी को, ये चौमा 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 आया है कहाँ से, कौन चौमा, उनको चिढ़ाने लगे बच्चे, ये चौमा कहाँ से आ गया, चार मुख वाला, ये तो बड़ी तो जानवर है ना, आदमी है ना, क्या है? और स्तव स्तुति कर रहे हैं, कृष्ण उनके तरफ में देखा नहीं, एक कमल लिया और कमल लेकर के उनके तरफ में ध्यान नहीं दिया, अंत में उनको गिर पड़ते हुए फिर चले गए। ये कब गए क्या हुआ उनको पता नहीं है, तो पता उपेक्षा कर रहे हैं ऐसे स्तव स्तुति करने के लिए, और गोपियों की एक गाली सुनने के लिए। ये हमको जरा लंपट कोई कह दे, गोपी चोर कोई कह दे, क्यों चोर, कौन सा चोर, यह कुल वह कुल दू कुल चोरी कर लेते हैं, जिसका हृदय चोरी कर, जिनके जन्म जन्मांतर की पाप राशि को दूर करके चोरी करके और उसके चित्त को सदा के लिए चोरी कर लेते हैं और उसको आनंद सिंधु में एकदम लगा देते हैं, ये उनका चोर है। लंपट किसको कहते हैं? लंपट अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरों को, स्त्री को बहन माता या कन्या नहीं जान करके उसके साथ में जो कुछ चिंतन करता है उसको कहते हैं लंपट। उसमें भी धुरंधर उनको कृष्ण कैसे लंपट शिरोमणि, कैसे जगत के समस्त जीवों का चित्त को अपने तरफ में लगा लेते हैं, एक इंच उनके तरफ में बढ़ा तो वो लाख पैर बढ़ते हैं आगे, और यदि एक ये केश भी यदि पीछे हटा तो वो क्या करते हैं, बहुत दूर हट जाते हैं, बहुत हट जाएंगे। इसलिए ये सब भक्ति की विचार है। मन करने में राधा जी देखती हैं, ये यही चाहते हैं, ये इसमें प्रसन्न है, वो समझती हैं उनके हृदय को, उनके अंदर में झांकती हैं, देखती हैं। वो साधक साधक नहीं, वो सेवक सेवक नहीं जो अपने प्रभु की सारी बातों को नहीं समझता, वैसी सेवा नहीं करता, नहीं तो वो क्या है, सेवक से को निकाल दो, बाकी रह गया क्या, बक, वो कपटी है, छली है। इसलिए मैंने देखा है मथुरा में शंकर जी के मंदिर के आगे, कृष्ण के मंदिर के आगे जो चौकट होता है उसको दबाते हैं, किस लिए दबाते हैं, ये भक्ति है। ऊपर से देखने से ऐसे ही मालूम पड़ती है, दो पैसे बताशे के पैसे में, बताशे से दो पैसे के कृष्ण को खरीद लेना चाहते, तो भी कहते हैं जी ठीक है, तुम क्या चाहते हो तो धन चाहिए ले लो,